ओम शांति। हमारी जो पूर्वज सीरीज है उसमें हम पूर्वजों के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें सुन रहे हैं। लौकिक में भी हम देखते हैं कि सबको अपने पूर्वजों के बारे में बहुत नशा होता है, क्योंकि उनकी बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें सुनने को मिलता है और उनसे हमें सीखने को मिलता है। तो आज हम लच्छू दादी के बारे में चर्चा करेंगे। शायद सभी जो भी बाहर के लोग हैं इतना दादी को अधिक जानते नहीं होंगे, लेकिन बहुत एक आदर्श आत्मा थी वो यज्ञ के लिए। और तो यज्ञ का जो प्रारंभ हुआ 1937 में सिंध हैदराबाद में, तो बहुत सारे छोटे बच्चे भी उस समय आए थे और उसमें से ही एक छोटे बच्चों में से लच्छू दादी जी भी थे। तो लच्छू दादी जी जब यहाँ यज्ञ में आए तो केवल 6 वर्ष के थे। उनका लौकिक जन्म 8 फरवरी 1930 को हुआ था और बचपन से ही जैसे पूरी तरह से समर्पित हो गए थे। बच्चों को जो बोर्डिंग में शिक्षा दी जाती थी वहां उन्होंने शिक्षा दी थी। तो वैसे तो वो लौकिक से बहुत धनाढ्य और आध्यात्मिक बैकग्राउंड वाले फैमिली से आए थे, लेकिन बाबा के जैसे ही बने तो पूरी तरह से मन बुद्धि से समर्पित हुए। जो कुछ भी यज्ञ में हुआ उसी तरह से जैसे बाबा ने चलाया वैसे चल रहे थे। तो उनका एक सौभाग्य रहा कि बोर्डिंग में आए तो उनको जैसे हमेशा दादियां सुनाती है कि हम लोगों को राजकुमारों से भी अधिक अच्छी पालना दी गई, तो उनको भी वो पालना प्राप्त करने का सौभाग्य मिला और वही पालना उन्होंने आगे जाके दूसरों को भी दी। तो इतना उन्होंने हर चीज को जो भी कुछ उन्होंने पालना ली उसका स्वरूप बने और औरों को भी वही पालना दी। लौकिक में वैसे यशु दादी जी को तो सब लोग जानते हैं। यशु दादी जी उनकी स्टेप सिस्टर थी, लेकिन उनके वहां पे कभी भी वो भाव नहीं आया। ये भी भाव नहीं था कि मेरी बहन है इसलिए बहुत अटैचमेंट था, ना ही कभी उनमें ये भाव था कि मेरी सौतेली बहन है तो मुझे उनसे कोई लेना देना नहीं। वो जैसे और सभी बहनों के साथ रहते थे वैसे ही उन दोनों का भी कनेक्शन था। मुझे तो बहुत साल तक पता नहीं था, जब दादी बीमार हुई उनको हॉस्पिटल में ले गए तब यशु दादी उनके साथ गए थे, तभी मैंने सुना था कि वो दोनों बहनें हैं, नहीं तो कभी किसी को भी ऐसे मालूम नहीं पड़ता था। तो इतने न्यारा प्यारा उनका रिलेशन था। तो सबसे पहले दादी जी को जब बड़े हुए तो ब्रह्मा बाबा के साथ रहने का सौभाग्य मिला, उनकी सेवा करने का सौभाग्य मिला। तो ब्रह्मा बाबा के लिए उनके कपड़े वरे रखना, बाबा को भोजन खिलाना, हम सभी ने वो चित्र देखा है जहाँ ब्रह्मा बाबा भोजन कर रहे हैं और दादी उनको परोस रही है। तो बाबा के लिए उनको इतनी भावना थी, इतना प्रेम था कि जब तक वो बाबा का सारा काम नहीं कर लेते थे तब तक खुद खाना भी नहीं खाते थे, कुछ भी नहीं करते थे। तो बाबा को बहुत प्यार से उन्होंने बाबा की सेवा की और बाबा को भी वो बहुत अच्छी लगती थी, क्योंकि उनका काम बहुत एक्यूरेट था और परफेक्ट था, उसमें कोई भी प्रकार की कभी कोई कमी नहीं होती थी। तो बाबा को उन पे बहुत नाज था। तो और हमेशा भागदौड़ करती रहती थी, कभी भी उनको आपने कभी सुस्त बैठे हुए या ऐसे आलस देते हुए, उबासी देते हुए कभी किसी ने नहीं देखा होगा, हमेशा फुर्तीली रहती थी। तो उनकी जो फुर्तीली रहने का संस्कार था और वो भागदौड़ करने का जो सेवा वैसे करती थी, तो बाबा ने उनको सलवार कमीज पहनने की परमिशन दी। बाबा ने कहा बच्ची तुम साड़ी नहीं पहनोगी, हमेशा सलवार कमीज ही पहनोगी। तो उनको एक संकल्प भी नहीं चला कि मुझे सलवार कमीज ही पहनना है। एक होता है जिनको साड़ी पहनना होता है वो लोग सोचते हैं कि हमको सलवार कमीज पहनने को मिलना चाहिए, थोड़ा इजी होता है कारोबार करने में, भागदौड़ करने में, कुछ भी करने में। और दादी थी, या तो दादी को जैसे सलवार कमीज पहनने को कहा तो दादी को वो संकल्प नहीं आया कि मैं साड़ी पहनूं, साड़ी पहनूंगी तो थोड़ा मुझे लोग मान देंगे, सलवार कमीज पे तो कोई मान देगा नहीं, मैं दादी 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 कहेंगे। तो वो भी उनका कभी संकल्प नहीं चला। तो कितना निश्चय बुद्धि थे, जो बाबा ने कहा वही फॉलो किया। तो अंत तक भी कभी उनका कोई संकल्प नहीं चला, क्योंकि एक दादी कहो तो हमेशा वो क्लासेस कराते हैं, वो सब उनको वो सब मान सम्मान मिलता है। तो उस रीति से मान सम्मान लच्छू दादी को कभी वैसा नहीं मिला, लेकिन उनके इसमें कभी भी कोई वो झलक नहीं आई, कभी कोई संकल्प नहीं आया, कभी कुछ भी नहीं था। तो कहती थी कि जो बाबा ने कहा है वही करना है। तो वो अंत तक वो सलवार कमीज ही पहनती रही। यज्ञ में केवल एक ही आत्मा है जिसको बाबा ने ऐसी परमिशन दी है, माना उन आत्माओं से, पुरानी आत्माओं से। अभी भी क्या होता है, सभी बहनों को भी जैसे ही वो ट्रेनिंग करने जाती है उनको सबसे पहले एजुकेशन यही दिया जाता है कि साड़ी पहनना है, कोई कितने बहाने करे लेकिन साड़ी पहनना है। तो बहनों को बहुत प्रॉब्लम होती है, लेकिन दादी को जो भी कहा हर श्रीमत को उन्होंने सर आंखों पर रखा। तो बाबा को उन पे नाज था और उनको बाबा के प्रति बहुत भावना थी, श्रद्धा थी, तो उसी हिसाब से वो चलती थी। फिर बाबा के बाद दीदी के साथ बहुत रहे, दीदी के ब्राह्मणी के तौर पे वो रहे। उन्होंने दीदी की भी बहुत अच्छी सेवा की, मतलब उनकी सेवा ऐसी थी कि उसमें किसी भी प्रकार की कोई नुक्स नहीं निकाल सकता था। मतलब इतना एक्यूरेट सेवा करती थी, कोई भी काम करना है तो पूरी तरह से परफेक्ट करना है, आदि से अंत तक उस काम को पूरा करके ही छोड़ना है। ऐसा नहीं कभी ढिलाई बरत दी, क्या हुआ नहीं किया तो अभी का नहीं बाद में करेंगे, ये सब उनमें नहीं था। करना है तो करना ही है चाहे कुछ भी हो जाए, तो वो काम बहुत प्यार से करती थी। और दूसरी बात, फिर दीदी दादी जब भोजन करते थे तो उनका भोजन मतलब उनको भोजन खिलाने की ड्यूटी उनकी थी। तो जैसे अगर भोजन बहुत अच्छा बना है लेकिन उसको अगर प्रॉपरली प्रेजेंट नहीं किया, डिश बहुत अच्छी है लेकिन प्रेजेंटेशन उसका अच्छा नहीं है, तो हमें मन नहीं करता। कोई गंदगी पड़ी है वहां जाके अगर भोजन करना है, या इतने बड़े बर्तन में कोई भोजन लाए और फिर वो परोस रहा है, तो खाने वाले का थोड़ा सा वो मन ये हो जाता है। लेकिन वो पूरी तैयारी करती थी, जब तक दादी दीदी आए तब तक वो पूरी तैयारी करती थी, बहुत सुंदर बर्तन में वो रखती थी। आज भी हमारे यज्ञ में जो कोई सिस्टम चलता है वो उन्हीं के हिसाब से उन्होंने सिखाया हुआ सिस्टम चलता है। तो बहुत सुंदर बर्तन में रखती थी, बहुत अच्छे से टेबल को सजाती थी, प्लेट्स भी बहुत सुंदर सजा के रखती थी। तो ऐसे करके उनको वो दादियों को भोजन खिलाती थी। और उनका वही नियम जो उन्होंने बाबा के लिए रखा था कि जब तक बाबा नहीं खाएंगे, जब तक बाबा का काम नहीं होगा तब तक वो नहीं खाती थी, तो वही रिस्पेक्ट, वही भावना उनकी दादी दीदी के प्रति भी थी। तो जब तक दादी दीदी भोजन नहीं करते थे तब तक वो नहीं खाती थी। तो दादियों की तो व्यस्तता बहुत होती थी, दादियों को बहुत लेट भी होता था, तो तब तक वो इंतजार करती थी। और उसमें भी कोई शिकन नहीं कि क्या इतना टाइम लग रहा है, हमको इंतजार करना पड़ रहा है, कोई कंप्लेंट नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, तब तक वो रुकी होती थी। वो जानती थी कि दादियों के कारोबार कितने इम्पोर्टेंट होते हैं, तो उनमें कभी कोई कंप्लेंट का मतलब जरूरत ही नहीं, ऐसा वो समझती थी। तो उन्होंने कभी वो कंप्लेंट भी नहीं की, उनको बहुत प्यार से खिलाती थी, उसके बाद में सारा समेट के खुद खाती थी। तो जैसे मैंने हर काम जो करना है वो विधि पूर्वक करना है। तो जैसे ठाकुरों की पूजा होती है तो कितनी विधि पूर्वक करते हैं, तो वैसे ही विधि पूर्वक हर कार्य करती थी। शायद ऐसा लगता है कि विधि पूर्वक जो करने का सिस्टम है भगवान के प्रति, तो शायद दादी ने शुरू किया हो, इतना सुंदर उनका काम था। उसके बाद भोग, लच्छू दादी का इक्वेशन मतलब है कि दादी मतलब भोग। तो दादी का भोग जो लगाते थे उसकी सारी तैयारी दादी करते थे। भोग बनाने वाले अलग होते थे लेकिन भोग यहाँ तक लाना, हॉल तक लाना, उसको बहुत सजाना अच्छे से, तो दादी बहुत अच्छे से करती थी। आपने सभी ने नोट किया होगा जब तक दादी थी, जिन्होंने देखा है दादी को, कि भोग के टेबल पे वो जो एक कपड़ा डालते हैं उसमें जरा भी कहीं सिलवट नहीं होती थी, वो चारों कॉर्नर से एक जैसा ही आना चाहिए, उसको ऊपर नीचे उनको वो चलता नहीं था, कुछ भी नहीं, एक्यूरेट, और जैसा है वैसा ही वो हमेशा वैसा ही दिखेगा। और कौन से भोग के मतलब कौन से दिन का भोग है, उसमें कौन से दिन के वो रुमाल डालने हैं, कौन से फूल रखने हैं, प्लेट कैसे सजानी है, वो सारा वो बहुत अच्छे से करती थी। उनका सिस्टम इतना अच्छा था कि अव्यक्त बाप दादा ने भी खुद होके उनकी महिमा की थी कि बच्ची बहुत एक्यूरेट काम करती है, तो एक बहुत बड़ा सर्टिफिकेट था उनके लिए वो। और वही सिस्टम सारे ही विश्व में, देश विदेश में जितने भी हमारे सेंटर्स है वही सिस्टम चलता है भोग का। जिसने भी वो जो हमेशा जल पीते हैं, अमृत पीते हैं गुरुवार का, उनको याद होगा कि जब से वो मतलब जिसने भी जो पिया है वो एक्यूरेट वही टेस्ट मिलेगा, उसमें जरा भी ऊपर नीचे नहीं होगा, कितना पानी डलेगा, कितना चीनी डलेगी, कितना उसमें इलायची पाउडर डलेगी, ये नहीं आज का थोड़ा फीका है, कल का बहुत मीठा था, ऐसा नहीं, वो बिल्कुल एक्यूरेट होता था हर काम। तो वैसे ही आज दिन तक भी वही सिस्टम वो चलता आ रहा है अपने यज्ञ में। आज भी आपको अमृत के जब पिएंगे तो वही टेस्ट मिलेगा। तो दादी ने सबको वेल ट्रेन किया है, कभी उनको बाहर भी जाना पड़ता था, हाँ ध्यान रखती थी ना दादी सब, खुद उन्होंने देखो कितना ध्यान रखते थे दादी जी कि ठंडी के दिनों में ठंडा जल पिया नहीं जाता, इसलिए वो गर्म पानी का बनाती थी कि सबको वो पीने में सहजता हो। तो इतना बहुत ही बारीकी से हर चीज का उनका ध्यान होता था हर चीज के लिए। तो जल भी वैसे ही पिलाती, कभी बाहर जाना है उनको तो जिसको बताना है उसको पूरा ट्रेन करती थी कि ऐसे नहीं, ऐसे 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 करना, तो उसको करवा के जाते थे कि उनके सामने खुद के सामने कि कहीं कोई थोड़ी सी भी चूक ना हो, क्योंकि ये भोग किसको लग रहा है, भगवान को लग रहा है। तो भगवान को लग रहा है तो उसमें उतनी ही एक्यूरेसी और उतना ही परफेक्शन चाहिए, क्योंकि उनका वो संस्कार ही था। तो कल किसी कोई भाई बता रहे थे वो जो भोग का अभी जब सब संभालते हैं, तो वो कह रहे थे कि एक बार दादी जी नहीं थे, उन्होंने सब कहा कि तुम ऐसे ऐसे करो, मैं नीचे हूँ, कल का भोग का तुम करना। तो उन्होंने सब किया, फिर भोग के जो फ्लावर्स की प्लेट होती है वो उन्होंने नीचे रख दी, कबर्ड वही था, ऊपर रखना है तो नीचे। आते ही उन्होंने सबसे पहला काम यही किया, अलमारी चेक की, और अलमारी चेक की तो भोग की प्लेट जो फ्लावर की प्लेट ऊपर रखना चाहिए था वो नीचे थी। उन्होंने तुरंत भाई को बुलाया, उसको सिखाया कि ऐसा ऐसा कैसे हुआ। तो उनका कहना होता था कि अगर कोई मतलब काम ऐसा हो या चीजें ऐसी रखी हुई हो कि अगर कोई अंधा व्यक्ति भी जाए तो उसको हाथ में वो चीज वहां मिलनी चाहिए, मतलब ऐसा काम होना चाहिए। तो उनकी बहुत ही मतलब एक्यूरेसी थी, जैसे उनके अक्षर भी आपने देखे होंगे, किसने देखे दादी के अक्षर, देखे पुराने लोगों ने तो देखा है ये सब। तो जैसे वो ना एक मोतियों जैसे लिखते थे, लिखती थी सिंधी में, अपने को तो कुछ पढ़ना नहीं आता था, लेकिन वो इतना सुंदर लिखती थी कि मंत्रमुग्ध हो जाए। और वो भी जैसे लेजर प्रिंट निकलता है ना, डॉट मैट्रिक्स लेजर प्रिंट जैसा निकलता है, वैसा उनका हैंडराइटिंग था, बहुत ही सुंदर हैंडराइटिंग उनकी होती थी। मैं हम लोग तो देखते थे, कभी वो कोई भी चीज देती थी तो वो तुरंत लिख देती थी कि ये इसको ये चीज दी है, तो तब देखा मैंने कई बार, तो बहुत ही सुंदर हैंडराइटिंग थी। और उनको परफेक्शन बहुत पसंद था, सफाई बहुत पसंद थी। तो एक बार की बात है, श्याम भाई ने कभी बताया था कि उनका मोबाइल खराब हुआ था, मोबाइल खराब हुआ था तो ठीक करने के लिए दिया, इन्होंने ठीक कर दिया उसको, और गंदा था थोड़ा सा तो इन्होंने एकदम क्लीन करके और सब अच्छे से दे दिया। तो दादी को डाउट हुआ कि ये मुठ्ठे ने ठीक ही नहीं किया है करके, ये ऐसा ही पड़ा है ये नहीं, तो उनको लगा था कि खराब ना इसने ठीक ही नहीं किया। फिर इन्होंने मंजू बहन से कन्फर्म किया, तो मंजू बहन ने कहा कि बहुत नहीं उसने करके रखा है। तो दादी को बहुत खुशी हुई कि कोई ऐसा भी काम करने वाला है जैसा मैं काम करती हूँ। तो उन्होंने तुरंत उनको ऑफर किया था कि तो तुरंत उन्होंने दादी ने उनको ऑफर किया कि तुम भोग का काम संभालोगे, लेकिन शायद इनकी व्यस्तता के कारण उन्होंने तभी मना कर दिया था, तो आज उनको वो मलाला होगा। तो उन्होंने वैसे एकदम उनको बहुत पसंद था कि ऐसा ही काम होना चाहिए, परफेक्ट होना चाहिए और व्यवस्थित होना चाहिए। तो दादी को ये सब बातों की बहुत खुशी थी कि अच्छे से कोई भी काम करना है तो अच्छे से काम करना है, टाल मटोल नहीं होना चाहिए उसमें। फिर दूसरी बात थी कि दादी के पास स्टोर था, फैंसी स्टोर, अभी भी वो लगा हुआ है बोर्ड। चंद्रपाल भाई, अरविंद भाई ने उनके साथ में ही सेवा की है, तो बहुत उनको अच्छा अनुभव है उनका। तो स्टोर जब संभालती थी तो हर चीज को बहुत सलीके से सहेजती थी वो, और सबके लिए जो भी चीज लाना है बड़े प्यार से वो मतलब जब खरीदारी करती थी बड़े प्यार से करती थी कि सबको अच्छा मिलना चाहिए, कि जो भी है बाबा के बच्चे, बाबा के घर में सरेंडर हुए हैं तो उनको अच्छी चीज मिलनी चाहिए, ये उनका हमेशा ध्यान रहता था। कोई भी किसी को कोई चीज कमी भी नहीं पड़नी चाहिए और ज्यादा भी कोई ले न जाए। कोई अगर आप मतलब जैसे हम लोगों को भाइयों को तो हमेशा दो महीने का सामान मिलता था, हम लोगों को बहनों को 4 महीने का एक साथ सामान मिलता था, तो 4 महीने का कितना उनका वो गिनती किया होता था, 4 महीने के लिए 2 ही साबुन मिलेगी, 1 ही ब्रश मिलेगा, टूथब्रश मिलेगा, तो वो सारा उनका फिक्स था, उतना ही मिलेगा, और उससे ज्यादा आप उनको मांग नहीं सकते थे क्योंकि इकोनॉमी बहुत करती थी, तो एक्यूरेट सामान देती थी, और अगर मांगने जाओ तो उसका सिर्फ क्लास होता था, वो नहीं देती थी क्योंकि उनको पता था कि सब अलग अलग प्रकार के लोग हैं, कहाँ कहाँ से आए हैं, कुछ भी कर सकते हैं, तो उनको खुद को कितना यूज करती थी उसी अनुसार वो देती थी। वो बोलती थी कि नहीं, मैं भी यूज करती हूँ यही चीज, मुझे इतना लगता है तो आपको भी उतना ही लगना चाहिए, तो वो एक्यूरेट हिसाब से चलाती थी। मुझे याद है एक बार वो टूथब्रश था वो बहुत हार्ड था, तो मैंने दादी को कहा था कि दादी मुझे थोड़ा सॉफ्ट वाला ब्रश चाहिए, मुझे मेरी जरा वीक है, ये जरा गम्स बहुत वीक है। तो बोलती मुट्ठी ऐसे थोड़ी करते, बाबा के घर में जो मिलता है वो लेना चाहिए। तो मुझे थोड़ा लगा कि क्या दादी थोड़ा सॉफ्ट देती तो क्या होता था। फिर उन्होंने कहा कि नहीं, तुमको जब नहाने जाना है ना तो आधा घंटा पहले वो ब्रश गर्म पानी में डुबा के रखना वो सॉफ्ट हो जाएगा और फिर उसी को तुम यूज करना, वो सॉफ्ट होता है। मैं भी ऐसे ही करती हूँ, तुम भी ऐसे ही करो। तो मैंने वो भी सीख लिया कि जो भी मिलता है बाबा के यज्ञ में उसे जो भी एडजस्टमेंट करना है करो, लेकिन वैसे ही यूज करना, उसमें कोई डिमांड नहीं होनी चाहिए। उनके पास जो स्टोर था, चप्पल भी वगैरह सब होती थी, सबको चप्पल जूते वो जो देना है वो दादी देती थी। तो हर एक की हर चीज नोट होती थी कि किसको क्या दिया, कोई दूसरी बार मांगने उनके पास जा नहीं सकता था, एक बार दी तो दी, लेकिन ध्यान भी बहुत रखती थी। अच्छा ठीक है, बताती हूँ। ध्यान भी बहुत रखती थी कि इसको मिलना चाहिए, जैसे फैंसी स्टोर का जो सामान होता था, हम लोग तो हर महीने 10 दिन वाले तब तो बाहर ही रहते थे कंपल्सरीली। मैंने बहुत साल तक 10 साल तक ऐसा रहा कि हर महीने हम लोग बाहर रहते थे, तो 4 महीने के बाद जो सामान मिलता था हम लोग नहीं होते थे, तो वो हमेशा ढूंढती थी कहाँ गए ये लोग, इनको सामान की कमी नहीं पड़नी चाहिए, ये लोग सामान लेके ही नहीं गए हैं। तो आने के बाद जब लेने जाओ तो वो 4 बातें सुनाती थी कि तुमको बिल्कुल परवाह नहीं है यज्ञ की, क्योंकि उनको ध्यान रखना पड़ता था ना कि कोई व्यक्ति है इसने नहीं लिया, उसको कमी पड़ रही होगी, उसको परेशानी हो रही होगी, वो सब बातों का ध्यान रखती थी। कोई नहीं आता था तो उसको ढूंढती थी, बहनों के कमरे में जाके उनको सामान देती थी, भाई तुम सामान लेके नहीं गए, ले लो तुम्हारा सामान, तुमको चाहिए होगा, कमी नहीं पड़नी चाहिए, जरूरत आए तो दिक्कत ना हो, किसी से मांगना ना पड़े। तो हाँ, किसी को एक साथ भी नहीं बुलाती थी, क्योंकि ये ना हो कि इसको ये दिया मेरे को ये दिया, वो भी नहीं, सबको अलग अलग बुला के सामान देती थी। मतलब भावना सबके लिए बहुत अच्छी थी, इसलिए वो ऐसा करते थे। फिर जूते का जो जैसे स्टोर था उनके पास, तो सब मतलब बहुत वो चीज जो देना है वही देती थी, आपकी ज्यादा चॉइस चलती नहीं थी उनके सामने। फिर एक बार क्या हुआ, उनके पास विदेश के जूते आए थे, तो उनके पैर बहुत छोटे थे, उसमें यज्ञ में 2-3 ही लोग थे, मनोहर दादी का हमारे रूम में गोपी बहन थे, वो दादी और मैं, हम चारों के पैर एक जैसे थे। तो उनके पास विदेश के काफी जूते और चप्पल आते थे, तो कभी किसी को देती थी कभी किसी को देती थी। तो मैं तो बहुत छोटी थी, मेरा कांटेक्ट भी काफी बाद में आया, क्योंकि जब तक मधुबन निवासी नहीं बने तब तक उनसे मेरा कांटेक्ट नहीं था, 5 साल के बाद उनसे कांटेक्ट हुआ। तो एक बार उनके पास चप्पल लेने गई थी, उनके पास वो विदेश के जूते पड़े थे, तो उन्होंने कहा ये तू लेके जा। तो मैंने पहले तो मना ही किया, नहीं चाहिए मुझे विदेश के जूते, मुझे वैसे भी विदेश की चीजों का कोई अच्छा नहीं लगता मुझे कुछ भी चीज। तो मैंने कहा नहीं चाहिए मुझे, ये सिंपल दे दो, नहीं अभी भी नहीं अच्छा लगता, तो वो चीज दिया उन्होंने। तो ऐसा नहीं कि हमेशा एक ही व्यक्ति को देना है वो चीज, कोई फेवर वाला है उसी को देना है। मनोहर दादी थी, अभी मनोहर दादी कोई सारी चीज वो दे सकती थी, लेकिन नहीं, उनको लगता था कि सबको मिलना चाहिए, बारी बारी से टर्न वाइज मतलब ऐसे देती थी, कभी किसी को कभी किसी को। तो मुझे जब जो विदेश का जो जूता दिया उन्होंने, तो सब लोगों को बहुत आश्चर्य हुआ कि लक्ष्मी दादी ने आपको विदेश का जूता दिया, तो बहुत ही सबको आश्चर्य लगा, बहुत अच्छा भी लगा कि अच्छा है, बोले कि कभी उनसे भी वैसी चीज मिली है। फिर और उनके पास जो स्टोर में रहता था, ऐसे अगर 4 जोड़ी जूते आए हैं उनके पास, तो हो सकता था वो खुद भी यूज कर सकती थी, रोज एक नया पहन के वो खुद भी यूज कर सकती थी, लेकिन उन्होंने वो भी नहीं किया, कि उनको लगता था कि सभी को मिलना चाहिए, मेरे पास चीज है, मेरे पास स्टोर है, तो मैं ही सब यूज करूं, वो भी नहीं था, सबको मिलनी चाहिए। वैसे ही अगर जैसे बारिश के दिनों में आपने गर्मी की चप्पल पहनी या सर्दी के जूते पहने, तो वो तुरंत बोलती थी ए इधर आओ, ये क्यों खराब कर रहे हो, बाबा ने आपको दिया है ना, बाबा के घर से आपको बारिश की चप्पल मिली तो वही पहनना चाहिए, ऐसा खराब भी नहीं करना है और तुम्हें भी वो सहूलियत रहे। तो बहुत ही बारीकी से उनका हर व्यक्ति के प्रति ध्यान था, किसी को मतलब आज सब लोग मिस करते हैं कि हमें आज कोई ऐसा पूछने वाला नहीं है कि तुमने ये किया क्या नहीं किया क्या, तब शायद लगता था उनके कि क्या है दादी टोक टोक करती है, लेकिन आज पता चलता है कि वो ध्यान रखती थी, टोकती नहीं थी किसी को भी, लेकिन ध्यान रख के हर चीज देती थी। तो छाते का तो बहुत बहुत सबको अच्छा अनुभव है, छाता भी दादी देती थी ना, तो 2 साल में एक बार छाता देती थी। 2 साल के पहले आप जाओगे आपको छाता नहीं मिलेगा। हाँ रेनकोट का हमें रेनकोट भी 5 साल के बाद देती थी। तो छाता अगर आपका अगर टूट गया है, मतलब आप बोले कि दादी मेरा छाता गुम हो गया, तो बोलती थी नहीं तुमको ध्यान रखना चाहिए, बाबा के यज्ञ का है, कोई फ्री में आता नहीं यहाँ पे, क्योंकि हाँ। तो सब लोग बहुत मतलब वो हमें सबको सिखाना चाहती थी कि बाबा के यज्ञ में जो भी व्यक्ति कुछ भी देता है बहुत मेहनत से देता है, अपनी कमाई का देता है, और जब वो भगवान के यज्ञ में सफल कर रहा है तो तुमको भी उसी रीति से उसको यूज करना है, उसकी संभाल करनी है। तो एक बार ऐसे ही बताया किसी ने कि आनंद किशोर दादा, आज जैसे निर्भय भाई यज्ञ में है वही पोजिशन उनका था, आनंद किशोर दादा का शायद उससे भी बड़ा था। तो एक बार उनका छाता टूट गया और फिर वो गुम भी हो गया, तो दादी ने कहा, वो दादी के पास गए कि लच्छू बहन मेरे को छाता दो, छाता दो। तो दादी ने कहा कहाँ है तुम्हारा पहला छाता कहाँ है? उन्होंने कहा टूट गया। तो टूटा हुआ है तो मुझे दे दो। तो कहा कि नहीं गुम हो गया। तो दादी ने कहा जब तक तुम वो छाता नहीं लाओगे दूसरा छाता नहीं मिलेगा। तो ऐसा नहीं, बड़े छोटे सबके लिए वो इक्वल थी, समानता की भावना थी, क्योंकि उनका था कि जो भी छाता अगर टूट जाता है, अभी भी वही सिस्टम चल रहा है सारे यज्ञ में, टूट जाता है अगर छाता या आपको नया छाता चाहिए तो पहले वाला छाता वापस करना। क्यों वापस करना? क्योंकि यहाँ बहुत सारे सेवाधारी आते हैं, कभी लेबर्स को जरूरत पड़ती तो वो छाते ठीक करके उनको यूज में ला देते कि बाबा के घर का ऐसा, ठीक है आप मधुबन निवासी हो, आपकी अच्छी पालना हो रही है, आपको नया छाता मिल जाएगा, लेकिन पहले वाले जो छाते हैं जो जिनके पास नहीं है उनको वो यूज होना चाहिए। तो वेस्ट को भी वेस्ट करते थे, सभी को मतलब सभी को सुख देने का ही अंदर एक संकल्प रहता था, कभी भी किसी को भी परेशानी न हो, कोई भी प्रकार की तकलीफ ना हो। और ऐसा भी नहीं कि आपको बहुत जरूरत है तो वो चीज नहीं देना है तो नहीं देगी, नहीं, आपकी जरूरत के हिसाब से वो देती भी थी। और एक था कि उनके पास ड्राई फ्रूट्स का स्टोर रहता था, सारे ड्राई फ्रूट उन्हीं के पास होते थे। तो जब यज्ञ में कुछ भी भोग बनता है जिसमें डालना है तो दिल खोल के सब देती थी, जितना डालना है उतना डालो। किसी को अगर कोई बीमार है, किसी को मतलब जरूरत है उसकी ड्राई फ्रूट खाने की, कोई बहुत वीक हुआ है, तो उनको भी वो देती थी, लेकिन उनके साथ कोई ठगी नहीं कर सकता था। कोई भी जाए और दादी मेरे को ना बहुत मैं वीक हो गया हूँ, मुझे ड्राई फ्रूट चाहिए खाने के लिए, डॉक्टर ने बोला है मुझे दे दो, तो वो ऐसा नहीं कि मैं इस स्टोर की मालिक हूँ तो मैं दे दूँ, नहीं, वो पहले पूरी इंक्वायरी करती थी और उसके बाद फिर बोलती थी कि जाओ। फिर मतलब इंक्वायरी ऐसी करती थी कि आप कहीं अगर आप झूठे हैं तो कहीं ना कहीं पकड़े जाओगे। तो फिर उसके बाद बोलती थी, हाँ वो सेटिस्फाई हो जाती थी, तो बोलती थी ठीक है मैं तो निमित्त हूँ यहाँ पे, आप दादी से परमिशन लेके आओ। और फिर दादी से परमिशन मिलने के बाद ही वो आपको देती थी। और दादी से परमिशन लेने के बाद भी ऐसा नहीं कि आपने बोला मैं दादी से परमिशन लेके आया हूँ या आई हूँ और मुझे दे दो, वो भी नहीं, वो पहले कन्फर्म करती थी दादी से कि दादी ये भाई या बहन आई थी उनको जरूरत है, आप समझती है देना है, तो दादी अगर हाँ बोलती थी तो वो देती थी। तो उनको कोई उन्होंने ना किसी के साथ कोई ठगी की, ना उनके साथ उनको कोई ठग सकता था, तो बहुत अच्छा उनका एक काम था। लेकिन उतनी ही भोली थी वो, हमेशा फिट रहती थी। दादी को आपने देखा होगा 81 ईयर्स की आयु में उन्होंने शरीर छोड़ा, लेकिन बहुत ही फिट थी अंत तक, उन्होंने कभी किसी से सेवा नहीं दी। तो जब एक भोली, इसलिए कहा कि एक बार क्या हुआ कि उनका, वो हमेशा बताती कि मैं ऐसे ऐसे एक्सरसाइज करती हूँ, ठीक रहती हूँ, फिट रहती हूँ हमेशा। तो एक भाई ने ऐसे ही मजाक में कह दिया कि दादी ऐसा है आप इतना मेहनत क्यों करते हो, रामदेव बाबा का तब शायद निकला ही था थोड़ा सा, तो उन्होंने कहा है कि आप एक मिनट तक आप बिना सांस लिए रहो और आपको आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं, आप एकदम फिट रहेंगे। तो दादी को भूली थी, समझ में नहीं आया, तो उन्होंने ऐसे ही किया। फिर उनका दम घुटने लगा जब एक मिनट ऐसा रहना है, तो फिर बाद में उनको समझ में आया कि ये भाई ने तो मेरे साथ ऐसे मजाक किया, बोलते मुट्ठा तो मुझे मारना चाहते। भोजन भी बहुत एक्यूरेट था, हाँ भूली थी ना, तो उनको हर काम में परफेक्शन था, एक्यूरेसी थी, तो अपने भोजन में भी बहुत हर चीज में मतलब संयम नियम मर्यादा के अनुरूप ही चली हमेशा, कि कभी भी उसके बाहर जाके कोई भी उन्होंने काम नहीं किया। हाँ, ट्रांसपोर्ट भी देखा हमने कि कभी भी कोई मतलब मैं बड़ी दादी हूँ तो मुझे वो मतलब इतनी बड़ी हूँ, मेरा भी यज्ञ से पहले से शुरू से पार्ट रहा तो मुझे कोई स्पेशल गाड़ी चाहिए नहीं। वो ट्रांसपोर्ट की गाड़ी से जाती थी और किसी या तो वहां से गाड़ी लेती भी थी तो दो चार लोगों को साथ में लेके जाती थी। और मैंने तो अधिकतर उनको शशि बहन की गाड़ी में जाते देखा है, तो या शीलू बहन की गाड़ी में, कि आप लोग जा रहे हो तो मुझे लेके जाना। तो कभी कोई खुद के लिए ऐसे पर्सनल कोई उनकी डिमांड नहीं थी, बहुत मतलब त्याग भावना भी थी, बहुत अच्छी वृत्ति थी। और कभी कभी ना भाई लोग बहुत उनका मजाक उड़ाते थे, मतलब अपना परिवार परिवार समझ के दादी छोटी सी भी दिखती थी तो बहुत मजाक करते थे। तो वो कभी कोई भी बात है ना दिल पे नहीं लेती थी, समझती थी ठीक है छोटे छोटे बच्चे हैं कहाँ जाएंगे, घर यही है उनका, तो चला लेती थी उनको। और दूसरी बात की एक बार किसी ने कहा मुझे कि उनका बहुत मतलब उनके डिपार्टमेंट में जाके वो न्यूज़पेपर पढ़ती थी, तो उनका ऐसा था कि हर चीज एक्यूरेट होनी चाहिए, परफेक्ट होनी चाहिए। तो न्यूज़पेपर शायद अभी चार लोग आके न्यूज़पेपर वहां जाके पढ़ रहे हैं तो इधर उधर हो ही जाता है, हर कोई वो का सिस्टम नहीं होता है कि न्यूज़पेपर पढ़ लिया तो उसको ठीक ठाक से लगा के रखना, या कोई एक पेज पढ़ रहा है तो दूसरा पेज साइड में पड़ा है तो ऐसा चलता है, कोई दूसरा पेज पढ़ रहा है तो वो थोड़ा न्यूज़पेपर फैला था। तो वो रोज जाके वहां ना बोलते थे ये क्या तुम्हारे ऑफिस में, मैं न्यूज़पेपर पढ़ने आती हूँ ये यहाँ यहाँ फैला रहता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और जहां मुझे बैठ उनको उनकी एक जगह फिक्स थी तो वहां ही उनको बैठ के पढ़ना था, तो अगर कोई बैठ गया तो जब तक वो उठना ही चाहिए, दादी गए तो वो उठना ही चाहिए, नहीं उठे तो वो प्रॉब्लम होता था। और तब क्या था कि सारे अकाउंट्स का कारोबार यहाँ ही चलता था, विदेशी आते तो विदेशी भी ज्यादातर यहीं रहते थे तो बिजी रहता था उनका डिपार्टमेंट हमेशा। तो फिर दादी का एक बार ऐसे हुआ तो वो जो भाई था उन लोगों ने बहुत बार समझाया कि दादी आप ऐसा करो, आपको अगर यहाँ प्रॉब्लम होती तो आप अपना न्यूज़पेपर ले लो अलग से, आपके लिए कोई मना नहीं है और आप अपने कमरे में पढ़ो। तो बोलती थी नहीं मुझे तो आधा घंटा एक घंटा न्यूज़पेपर पढ़ना है तो मैं क्यों वेस्ट करूँ, मेरे ऊपर सारा यज्ञ का बोझ मेरे ऊपर क्यों लू, यहाँ पे तो सब लोग पढ़ते हैं मैं भी वहीं पढ़ लूंगी। तो एक बार बहुत तू मैं ऐसा हो गई, वो भाई बहुत दादी के ऊपर गर्म हुआ क्योंकि ये रोज का ही चलता था दादी का, ऐसा ही चाहिए वैसा ही चाहिए, तो एक दिन वो गर्म हो गया। तो फिर दादी भी बोल के चली गई कि तुम्हारे डिपार्टमेंट में मैं दोबारा कभी नहीं आऊंगी, ऐसा बोल के चली गई। लेकिन दूसरे दिन क्या हुआ, उसी टाइम पे दादी का जो फिक्स टाइम था उसी टाइम पे वो वहां चली गई और न्यूज़पेपर पढ़ ली। ये भाई को जो जिसने दादी के साथ तू मैं की थी वो भाई को बहुत पछताता हुआ कि जो भी है वो बहुत बड़ी दादी है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, वो बहुत योग किया उसने, दादी को माफी मांगी योग में क्योंकि सामने जाने की तो हिम्मत नहीं थी दादी के, तो उसने योग में माफी मांग ली और बाबा को बहुत सॉरी कहा कि बाबा ये ऐसा कैसा हुआ, मेरे से इतनी बड़ी गलती हुई, मैंने को दादी के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। फिर दूसरे दिन दादी उसी टाइम पे आ गई फिर से, तो ये भाई बहुत शर्मिंदा हो गया कि मैंने ऐसा कहा, दादी इतना बोल के गई तो भी दादी फिर से आ गई है। तो उसने दादी को बहुत माफी मांगी, दादी मुझे माफ करो माफ करो। दादी बोलते कोई बात नहीं हो गया ना हो गया। तो बोलते नहीं आप मुझे जब तक नहीं बताओगे आपने कैसे या मुझे मतलब माफ किया या कैसे आप सब कुछ भूल गई तब तक मैं आपको न्यूज़पेपर नहीं पढ़ने दूंगा। फिर दादी ने उसको बहुत अच्छा एग्जांपल दिया कि बोलते तुमने कल खाना खाया था, तो बोलता हाँ, तो सुबह हो गया निकल गया सारा, बोलते तो बोलता हाँ, तो बोलते ऐसे ही बोलते कोई बात हो गई ना, बोलते तो हो गई तो हो गई, दूसरे दिन उसको भुला दो ना, निकाल दो उसको बात को उसी टाइम। हाँ उन्होंने यही शेयर किया था। तो वो भाई का बहुत अच्छी शिक्षा मिली, वो मतलब कोई भी चीज वो मन में नहीं रखती थी, कुछ भी हो जाए साफ दिल की थी, किसी के साथ कुछ भी हो मतलब हाँ, तो किसी की भी कोई भी बात चित पर नहीं रखती थी, बहुत साफ दिल की थी, जो अगर लगा उसको गलत लगा तो तुरंत वो बोल देती थी और काफी सारे डिपार्टमेंट्स में चक्कर मारती रहती थी और जहां जो कुछ गलत दिखा वहीं उसको टोक के वो ठीक करवाती थी। तो उन्होंने वो संस्कार डाले, खुद का अगर वैसा संस्कार था तो उन्होंने वही संस्कार दूसरों में भी डाले कि नहीं ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, क्योंकि यज्ञ के प्रति जो उनकी भावना थी तो उसी भावना को उन्होंने दूसरे के दिल में भी पल्लवित किया। कोई भी बात मतलब ऐसा ढिलाई बर तो ऐसे ढीले हो जाओ वो उनको पसंद नहीं था, एक्यूरेट थी तो एक्यूरेट ही सबको वो बनाती थी। तो वो भाई ने बहुत अच्छा मतलब कहा कि मुझे बहुत अच्छा एक सीखने को मिला उनसे कि, और काफी सारे लोगों को वो एक प्रेरणादायक मिसाल बन गई। और बहुत इकोनॉमी से हमेशा चली थी, हमें कोई भी चीज यूज करना है तो अच्छे से भी यूज करना है, कम भी ना हो जास्ते भी ना हो, और इकोनॉमी से भी यूज करना है। फिर नेक्स्ट था कि हमने देखा है सभी ने हिस्ट्री हॉल में वो जो चीजें रखी है बाबा की, वो छोटी सी गीता लेंस है और पत्र है, कुछ वो पैड है, पेंसिल है, सब कुछ है। तो ये चीज हाँ राम सीता का वो जो खेल बाबा बताते हैं वो भी एक है। सब कुछ उन्होंने हर चीज बहुत सहज के रखी थी, जैसे बाबा भी पत्र लिखता था तो वो सब चीजें उनको बाबा को लाके देती थी। जब तक बाबा के पत्र नहीं होते हैं तब तक वो उसको बैठी रहती थी, मतलब इंतजार करती थी, हो जाए तो उठ के प्रॉपर जगह पे रखती थी। तो ये सारी चीजें उन्होंने सहज के रखी, तो आज भी सबको वो चीजें देखने को मिलती हैं। और दूसरा एक था कि वो रजिस्टर मेंटेन करती थी, यज्ञ में जितने भी लोग हैं उनके डेट ऑफ बर्थ क्या है, उनके लौकिक नाम क्या, उनके अलौकिक नाम क्या, फिर उन्होंने शरीर कब छोड़ा। तो यहाँ तो किसी को याद ही नहीं था क्योंकि इतना बड़ा परिवार है, रोज कोई ना कोई जाता है, कुछ ना कुछ होता है, तो कोई याद नहीं रखता है किसी को। तो वो सबका रिकॉर्ड मेंटेन करती थी, उनको वो बहुत मतलब ये होता था कि नहीं सबका सबको मालूम होना चाहिए। फिर क्योंकि भोग भी लगाना होता है तो वो याद से उन लोगों के लिए भोग लगाती थी। तो यज्ञ के जो भी वत्स सभी थे उनके लिए उनको बहुत भावना थी, और कभी वो बीमार नहीं पड़ी, पूरी लाइफ लॉन्ग कभी बीमार नहीं पड़ी। सिर्फ लास्ट में तीन चार दिन ही कुछ ऐसा वो एडमिट रही और उन्होंने शरीर छोड़ा था, लेकिन उसके पहले उनको यहाँ पे फेस पे कुछ ऐसा काला काला हो गया था। हाँ तो वो कुछ हुआ था। तो एक बार वो शरेंद्र भाई बता रहे थे परसों मुझे, तो बोलते मैंने दादी को बोला, बोलते दादी ये क्या हुआ आपको, यहाँ काला काला क्यों दिख रहा है? तो दादी ने कोई जवाब नहीं दिया, उन्होंने फिर से पूछा, फिर जवाब नहीं दिया, छोड़ दे तुम इधर ध्यान नहीं दो बोल, फिर उन्होंने पूछा, फिर नहीं जवाब दिया। तो बोलता मुठ्ठा अभी तक तुम शरीर को ही देखता है, अभी तक आत्मा देखने का अभ्यास नहीं हुआ तुम्हारा, ये क्या करना है, बोलते छोड़ दो जो हो गया हो गया। तो उनको तो देहाभिमान था ही नहीं, लेकिन दूसरों का अगर ऐसे भी देखा तो उन्होंने तुरंत उसको बताया कि नहीं आत्मा का अनुभव, आत्मा को देखने का अभ्यास करो। हालांकि उन्होंने तो अच्छे से पूछा था, फिर भी उनको मतलब खुद के मन में होता था कि आत्मा देखने का ही अभ्यास करना, तो वही उन्होंने उनको पाठ पढ़ाया। फिर जी फिर दादी का जो ऐसा तबीयत थोड़ी हो रही थी ना, तो सभी ने बोला कि दादी जाओ ना आप हॉस्पिटल जाओ, डॉक्टर के पास जाओ, दिखाना चाहिए ग्लोबल जाओ नहीं तो अहमदाबाद जाओ। तो दादी ने कहा नहीं, जब तक बनारसी भाई नहीं बोलेगा मैं कहीं नहीं जाऊंगी। हाँ बनारसी भाई लेके जाएगा कि, मतलब कि जो व्यक्ति जिस डिपार्टमेंट के निमित्त है उसी के थ्रू वो काम होना चाहिए। वो तो इतने बड़े दादी थे, वो खुद कुछ भी फोन करके फटाफट बोल सकते थे, जा सकते थे, लेकिन उन्होंने खुद होके वो डिसीजन नहीं लिया। उन्होंने कहा वो निमित्त थे, वो बनारसी भाई लेके जाएंगे तो मैं जाऊंगी। और फिर बनारसी भाई लेके गए, ग्लोबल लेके गए थे, लेकिन उनकी तबीयत थोड़ा एकदम ज्यादा ही थी, तो फिर तुरंत उनको अहमदाबाद रेफर किया था। अहमदाबाद में भी दो दिन सिर्फ रहे और फिर उन्होंने 14 अगस्त 2010 को अपना शरीर त्याग दिया। तो जिंदगी में कभी भी उन्होंने किसी से सेवा ली नहीं, सिर्फ सेवा की। तो अपना बहुत बड़ा महान भाग्य बना के गई दादी, और सबके अंदर यज्ञ के प्रति भावना, एक्यूरेसी, इकोनॉमी, ये सारे गुण के बीज सबके अंदर डाल के गई। ऐसी आत्मा को हमारा नम्र अभिवादन है। ओम शांति।